इस डिवाइन ग्रेस सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वस्तुत भक्त वृंद की जय निताय गौर पिमानंद ऑल ग्लोरियस टू द सिंबल ग्लोरियस टू द सिंबल ओम ज्ञान्तिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाभयं अतिस्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे हरे कृष्ण तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की इस क्लास में। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, साउंड सिस्टम नहीं है। तो आज से 5000 साल पहले जब सूत गोस्वामी जी ने कथा करी थी 88,000 ऋषियों मुनियों के बीच में, तो साउंड सिस्टम नहीं था। तो उन्होंने शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न किए और उन्होंने जवाब देना शुरू किया। कितना पिन ड्रॉप साइलेंस रहा होगा सर, कि व्यक्ति यहाँ से बोलते थे कितने लोग सुन लेते। और अभी क्या है कि अभी तो इंद्रियां भी ऐसी हैं हमारी कि खराब हो जाती हैं, अलग से मशीन लगानी होती है ना, तो इनपरफेक्ट सेंसेस हैं। तो इसलिए आप लोगों को आगा ना आना पड़ेगा। तो हम लोग पिछली बार हमने चर्चा की थी, क्या एग्जैक्टली टॉपिक था याद है किसी को? हाँ जी, हाँ, एक प्रसंग था कि कलयुग में क्या क्या होगा, उसके लिए मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से जब मिले थे जंगलों में तो समझाया था कि क्या क्या होने वाला है। तुम लेकिन क्या चीज बताई थी हमने, क्या फोकस है? हाँ जी, हाँ, ये लक्षण बताए थे। तो एग्जैक्टली क्या मतलब था बताने का, ये याद है किसी कुछ? पिछले हफ्ते क्लास हुई थी, कि हम लोग ज्यादातर मोहग्रस्त रहते हैं और उस मोहग्रस्ती में हम सबसे पहले अपने आप को शरीर मान के बैठते हैं और शरीर के हिसाब से कार्य करते हैं और पूरा संसार इसी से ग्रस्त है कि नहीं? हर व्यक्ति अपने आप को शरीर मानते हैं, हर व्यक्ति अपने आप को किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी लिंग से, किसी न किसी जाति से जोड़ता है और इस प्रकार उसके सारे कार्य होते हैं और ये सारे के सारे कार्य जितने भी हो रहे हैं, जब तक कि वो सेल्फ रियलाइज नहीं है, जब तक कि वो उस धरातल पे कार्य नहीं कर रहा, तब तक उसके किए गए काम सारे उसको संसार में बांधेंगे। और तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव हमने बात की थी, किस प्रकार इन दो गुणों के प्रभाव में आकर जीवात्मा इन सब लक्षणों से ग्रसित होता है और वो बिल्कुल भी नहीं सोच पाता कि सच्चाई क्या है। जैसे हम लोग जब अपने जीवन को जीते हैं तो हम प्रयास करते हैं अपने, पहली बात तो सबसे पहले कभी भी कोई व्यक्ति अपने को या अपने अंदर कमियां नहीं देख पाता, ये उसकी सबसे बड़ी कमी है। जैसे कई बार बोलते ना कि राजा ने कहा जाओ तुम सबसे गंदा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, है ना, कोई नहीं मिलता, सब लोग अपने को अच्छे बता रहे होते हैं। तो उस दिन भी शायद उपेंद्र अमन कोई कहीं प्रसंग सुना रहे थे कि ऐसा कोई गंदा मिला, उसने कहा भी जो भी खाते हैं हम गंदी करते हैं तो सबसे बड़े गंदे तो हम ही हैं। तो एक्चुअली बड़ा मुश्किल है अपने अंदर कमियां देखना। और एक कहावत भी बोलते हैं, बुरा जो देखन में गया वो बुरा ना मिले कोई, है ना, जो मैंने अपने आप को देखा तो मुझसे बुरा ना कोई, ऐसा कुछ है ना। तो एक्चुअली वास्तव में है क्या कि इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग सेल्फ प्रेज से या सेल्फ एस्टीम से इतने ज्यादा बंधे रहते हैं कि हमें लगता है कि मैं जो भी कार्य करता हूं, मैं जो भी सोचता हूं या जो मेरा जो भी विचार है वो बेस्ट है, और उसके आधार पर हम लोग सारे डिसीजन लेते हैं या विचार करते हैं। लेकिन अपने विचार के अलावा जो दूसरे विचार हैं, जो दूसरों के जो विचार हैं, हमें लगता है कि वो सब गलत हैं, है कि नहीं, लगता कि नहीं। तो क्या कारण है ऐसा कि हम लोग दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं केवल अपने विचारों के अलावा या अपने कर्मों के अलावा? चाहे हम देखिए, दो तरह का जीवन है, एक तो जीवन है जो भौतिक जीवन है जिसमें तो हर व्यक्ति एक दूसरे को दोष देता है, हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति क्रिटिसाइज करता है, अपने को अपनी प्रशंसा चाहता है, सब कुछ बाहर चल रहा है। लेकिन जब हम भक्तों के समाज में आ जाते हैं तो ये चीजों के पीछे दंडनीय अपराध हो जाता है, दंडनीय अपराध कह सकते हैं इसको। अब मतलब हम यहाँ पर वैसे दंड नहीं, धारा नहीं लगने वाली, कोई 200-300-500 धारा नंबर ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन दंडनीय अपराध का मतलब क्या है कि हो सकता है यहां दंड ना मिले लेकिन आध्यात्मिक जगत में किया गया कोई भी ऐसा काम जो आपके मन से, भगवान की कृपा से मन से किए गए पाप का फल नहीं है, लेकिन मन से बार बार सोचने के बाद वो कर्मों में आ ही जाता है, पहले जिह्वा पर आएगा फिर कर्मों पे आएगा। इसलिए कहते हैं वॉच योर थॉट्स बिकम्स योर वर्ड, एंड वॉच योर वर्ड, योर वर्ड्स बिकम्स योर एक्शन, एंड वॉच योर एक्शन क्या बनती है, डेस्टिनी, दे बिकम हैबिट एंड हैबिट बिकम डेस्टिनी, ऐसा कुछ होता है। कहां से शुरू हुआ? विचारों से, कि विचार जब आते हैं और विचारों की दुनिया में जब व्यक्ति घूमता है तो विचार से जो जिसका बार बार चिंतन चल रहा है तो जुबान पे तो आएगा आएगा, और जुबान से फिर वो एक्शन पे आएगा, व्यक्ति करेगा उसको, और करने से एक बार करेगा फिर दोबारा भी करेगा तो आदत बनेगी, और आदत बनने से क्या होगा, हमारा प्रारब्ध बन जाएगा, हमारे पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरने के चक्कर बन जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ थॉट। तो मन से कई बार किसी को लगे कि ठीक है कलयुग में तो मन से कोई विचार करने पे पाप नहीं है, तो चलो मन से विचार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मन में अगर थोड़ी समय तक ज्यादा रख लिया चीज को तो वो शब्दों में और व्यवहार में आ जाएगा। इसलिए मन को भी हम बोल रहे हैं, मन हो गया, वाणी हो गई और कर्म हो गया। इन सब चीजों से आध्यात्मिक वातावरण में अर्थात डिवोटीज के बीच में किए गए कर्म या बातें या क्रिटिसिज्म या दोषारोपण या इस प्रकार की चीजों का क्या होता है, नुकसान क्या होगा, जो कि हम लोग पढ़ते हैं वैष्णव अपराधों में, उन सब चीजों, मतलब जिस चीज का बाहर लॉस नहीं है भौतिक समाज में, आप किसी को उंगली दिखा के बात कर लो, आप किसी को गाली दिखा के बात कर लो, आप कुछ भी कर लो, वो बात अलग है कि जैसे आजकल नियम थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं तो हर जगह वो कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत सारी चीजें लोगों ने ऐसी की हैं जिसका कोई फल नहीं मिला किसी को। हमारे बीच में सरकार की तरफ से भी लोग हैं तो ये लोग जानते हैं कि अगर कोई पकड़ा गया, किसी का सबूत मिल गया तो वो अंदर जा सकता है, है ना। लेकिन जिनके नहीं पकड़े जा रहे तो वो सब बाहर घूम रहे। तो लेकिन भक्तों के समाज में तो रूप गोस्वामी जी ने खाली लीला स्मरण करते हुए उस लीला को देख के हंसे थे। एक कुरूप ब्राह्मण जो जा रहा था उसने केवल ये देखा कि ये व्यक्ति हंस रहे हैं, उनको लगा मुझे देखकर हंस रहे हैं, मेरी स्थिति को देखकर हंस रहे हैं, और इतनी सी बात पर उन्होंने क्या मान लिया, उनको ठीक नहीं लगा। और इतना उनके सोचने से रूप गोस्वामी जी का लीला स्मरण वहीं रुक गया। भगवान की लीलाओं का स्मरण चल रहा है कि भाई कृष्ण जो हैं राधा रानी के लिए पेड़ को नीचे करते हैं, राधा रानी पेड़ पकड़ती हैं ताकि फूल तोड़ सकें, कृष्ण टहनी छोड़ देते हैं, राधा रानी ऊपर लटक जाते हैं। ये देखते हैं लीला में ऊपर हो रहा है और उसको देखकर हंस पड़ते हैं। लेकिन उस ब्राह्मण को क्या लगता है कि मुझे देख के हंस रहे हैं। इतना सा उनके, आप सोच रहे हैं कोई इंटेंशनली नहीं किया था उन्होंने, लेकिन हुआ क्या कि लीला सुन लो। अब हम तो बात कर रहे हैं विद इंटेंशन जो हम करते हैं। तो उसका क्या होगा, क्या हम कभी ऐसी स्थिति में पहुंच पाएंगे जहां पर इस प्रकार की लीला स्मरण हो कि आज भगवत धाम जाने की हम जो बात सोचते हैं। तो कहने का मतलब क्या, वैष्णव समाज में व्यक्ति को इतना सजग हो जाना चाहिए और इतना सेंसिटिव हो जाना चाहिए कि वो क्या करे, इन सब चीजों में बचे। मैंने शायद एक बार डिस्कस किया था, एक बार बड़े मंदिर में था मैं, 2 महीने पहले की बात है, तो मैं वहाँ कीर्तन करने के लिए बैठा, मैंने कभी कीर्तन नहीं किया था वहाँ, तो मैंने रिक्वेस्ट की मैं आज कीर्तन करूँ, तो कहते कर लो। मुझे हिजुलंद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बुलाया था बात करने के लिए, तो मैं गया, महाराज को रशिया जाना था तो मैं कीर्तन करने लगा, और महाराज आए फिर दर्शन करने के लिए, दर्शन के बाद जाना था। तो महाराज ने देखा मैं कीर्तन कर रहा हूँ, तो महाराज को जो हम माला पहनाई गई, माला ने महाराज ने वो माला मुझे पहना दी ला के। तो मैं अकेला नहीं था वहाँ पर, एक मृदंग भी बजा रहे थे ब्रह्मचारी, एक साथ में करताल बजा रहे थे, 2 लोग और बैठे हुए थे ब्रह्मचारी से। तो एक माला और थी महाराज के पास, तो महाराज ने वो मेरे साथ वाले को पहना दी, है ना। तो अब 2 ही थी, लोग थे 5, तो महाराज ने बाकी क्या किया, बाकी 3 के सर पर जाकर ऐसे से हाथ कर दिया, ऐसे से एकदम कीर्तन में सही है। सेंसिटिविटी का मैं बता रहा हूँ कि अब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो तो हमारे गुरु हैं, सन्यासी हैं, कि उनसे हमें कुछ मिलेगा। वो ना भी देखें तो भी चलेगा, लेकिन वो अपने स्तर पर क्या देख रहे हैं कि भाई मैंने 2 लोगों को माला दे दी, अब 3 के लिए नहीं है मेरे पास, तो उनको स्पेशली उनके पास जाकर सर पर ऐसे ऐसे हाथ लगा के आशीर्वाद दिया ताकि इनको दिल में बुरा ना लग जाए। तो हाइट ऑफ सेंसिटिविटी है कि एक वैष्णव जानकर अनजाने में बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी वैष्णव के हृदय में यह लगे कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया, है ना। इतना सजग होते। अच्छा, ये घटना होने के बाद हम तो कीर्तन ही कर रहे थे, फिर अचानक हमने क्या देखा कि महाराज का असिस्टेंट जो है वो ऑल्टर में गया, पुजारी से बोला, कुछ बोला, उसने पुजारी ने माला दी उनको, 3 माला लेकर आया और जो 3 बच्चे ब्रह्मचारी थे उनके गले में डाली और सोचिए कि महाराज ने जाने के बाद भी महाराज को लगा शायद भाई कहीं उनको ऐसा बुरा ना लग जाए, तो असिस्टेंट को भेज कर कि भाई उनके लिए भी माला लाओ और 3 को पहना कराओ, है ना। तो हाइट ऑफ सेंसिटिविटी, मर्सी जिसे बोलते। और जबकि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसा कुछ कि ऐसा होगा कुछ। इधर एक वैष्णव लीला स्मरण कर रहे हैं उसको देखकर हंसे, और इधर एक ब्राह्मण ने बुरा मान लिया। और ऐसे ही अभी एक घटना और घटी थी कुछ दिन पहले। हाँ, सच्चिदानंद स्वामी महाराज ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे अभी पंजाब विभाग में 4 बजे की बात। तो अचानक एक भक्त ने प्रश्न किया, तो होता ही है हम जैसे एक दूसरे को सब जानते ही हैं, तो किसी ने कुछ प्रश्न किया, कई बार कोई ऐसे भी प्रश्न करता है जिसमें सबको हंसी आती है। तो उन्होंने प्रश्न किया, क्वेश्चन ठीक था, बट फिर भी क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया तो कुछ ब्रह्मचारी हंसे, बट महाराज को नहीं लगा, मुझे महाराज को बिल्कुल पता नहीं था कि क्यों हंस रहे हैं। तो महाराज ने पूछ लिया क्यों हंस रहे हो आप लोग, क्योंकि उनको महाराज को लगा कि भाई उनके प्रश्न करने से कुछ ब्रह्मचारी हंस रहे हैं, जबकि कोई गलती नहीं उसके प्रश्न में। हंसकर ऐसे ऑफेंसिव हो जाता ना कि किसी को बुरा लग सकता है। खैर हमारे अंदर उस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ भाई हंस सकते हैं क्योंकि, लेकिन फिर भी महाराज ने पूछा भाई आप लोग क्यों हंस रहे हो नेसेसर, हमारी रक्षा करने के लिए कि भाई मत हंसो इस तरह बुरा। तो इतना ध्यान दिया जाता है वैष्णव समाज में कि कोई व्यक्ति अपनी वाणी से अपने व्यवहार से मन से भी किसी दूसरे वैष्णव के प्रति इस प्रकार का उसको उद्वेग ना दे, है ना, या उसके लिए अननेसेसरली उसको तंग ना करे या कोई कारण ना बने उसकी डिस्टरबेंस का। तो क्या करना पड़ता है व्यक्ति को ऐसे स्तर पर पहुंचने के लिए, क्या करना पड़ेगा? और वो पहुंचना तो है ही, अगर मैं बता रहे हम बता रहे हैं कि अगर उनको लीला स्मरण बंद हो रहा है तो, और हम लोग अगर सुबह शाम कहीं ना कहीं कुछ अपराध हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिसिज्म चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी के गुणों को देखकर या अवगुणों को देखकर या किसी की नेगेटिव चीज को देखकर उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो लॉस किसका है? पहले तो समझ तो आना चाहिए कि लॉस है किसमें इसका। जिसने कुछ गलत कर दिया मान लीजिए और हमें पता भी नहीं कि गलत है भी कि नहीं, उसको देखकर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो लॉस किसका है? भाई बाहर के समाज में आप डिस्कस कर लो, आप गालियां दे लो, आप कोर्ट केस कर दो, आप कुछ भी कर रहे हो, इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इस वातावरण में प्रभाव पड़ेगा। और खासकर उनको जो लोग भक्ति में अग्रसर होकर जो अपना जीवन अपना समय अपनी वाणी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो सीरियस हैं भक्ति में, जो सच में चाहते हैं भगवत धाम जाएं, ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। भक्ति कोई हॉबी नहीं है, ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि यस आई बिलोंग टू इस्कॉन, मैं उधर भी जाता हूं, मैं इधर भी जाता हूं, मैं ऐसा भी हूं, मैं वैसा भी हूं और मैं इधर भी जाता हूं। होना क्या चाहिए कि वहां पांच जगह जाने का प्रभाव या उसका व्यवहार आपका यहां नहीं होना चाहिए ऐसा, जबकि क्या होना चाहिए, यहां पर जो समय बिता रहे हैं आप, यहां से सीखकर जो गए हैं, इसका प्रभाव उन जगहों पर होना चाहिए ताकि आप दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर सके भक्ति से और कृष्ण से। तो पहले हम बात करते थे कि एक डिवोटी जब इंट्रोस्पेक्टिव होता है, और इंट्रोस्पेक्टिव का हिंदी में बोलते हैं आत्मसंवीक्षण, विश्लेषण, आत्मविश्लेषण करना, ये जानना, ये समझना कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, जो मैं शब्द बोल रहा हूं, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, दूसरे के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर तो केवल हम लोग भौतिक दृष्टि से देखकर ही एक दूसरे पर या एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। इन सब का कारण क्या होता है, इस प्रकार की छेड़छाड़ का कारण जो भी वैष्णवों के बीच में, व्यक्ति को भगवान के नामों में टेस्ट नहीं आता। सबसे पहले हरिनाम प्रभु अपनी कृपा छीनते हैं, चैंटिंग टेस्टलेस हो जाती है, सेवाओं में भी टेस्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और वैष्णवों के साथ संबंध एक्चुअली ये तो वो व्यक्ति समझ सकता है जिसको पहले कभी टेस्ट रहा हो, जिसको चैंटिंग में टेस्ट रहा हो, जिसको भगवान की कथा में टेस्ट रहा हो, जिस व्यक्ति को वैष्णवों के संग में आनंद आता हो, तो ऐसा व्यक्ति से जब कभी कुछ हो जाता है तो इस प्रभाव को समझ सकता है कि मेरे साथ क्या नुकसान हो गया, मैंने क्या खो दिया इन दिनों में, मेरा क्या नुकसान हो रहा है, वो उस प्रभाव को देख पाता है। लेकिन अगर उसकी मात्रा एक दो नहीं है, कॉन्टिन्यूसली कर रहा है अपराध, तो क्या होता है कि वो एक रूटीन चीज बन जाती है कि ठीक है, और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि लेयर मोटी हो गई, अपराधों की, तो उससे फिर उसको लगता है कि मुझे कंप्लीट तो करनी है माला, या मुझे ये चीज तो पूरी करनी है, और हो सकता है कुछ सेवाएं वो एंथुजियास्टिकली भी करे, एक बाहरी रूप से देखने में लगेगा प्रभु जी ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन समस्या क्या हो सकती है कि वो सर फिर केवल मान लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए, क्योंकि जब कभी कोई व्यक्ति इस प्रकार के सेवाओं को करते हुए या वैष्णवों के साथ संबंध में कहीं ऊपर नीचे होता है, तो सबसे पहले प्रभाव उसका चैंटिंग हियरिंग रीडिंग पे पड़ता है, बहुत मैकेनिकल हो जाता है, उसके अंदर से लाइफ निकल जाती है। चैंटिंग हरि नाम अपने आप में इतना, कहते हैं आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद के सागर में वृद्धि करता है, बार बार वृद्धि करता और बढ़ता जाता है ये आनंद, इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इसकी, हरि नाम की आनंद की, आनंद के सागर में कोई लिमिट नहीं है इसकी, कि इतने पर जाने पर खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, ये दिन ब दिन बढ़ता है। लेकिन अगर कहीं पर भी व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, भक्ति देवी के साथ, जो इतने मुश्किल से भक्ति लता बीज मिला, तो वहां दिक्कत शुरू हो जाती है, और हम प्रभाव देख सकते हैं अपने जीवन। जो भी व्यक्ति सिंसियरली भक्ति करने का प्रयास कर रहा है और जब कभी उसके साथ कुछ ऐसी घटना होती है, तो वो तुरंत जो है इस चीज को देख सकता है, समझ सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की चीजें घटित हो रही है जिसके जीवन में, और वो उसके बाद में रियलाइज कर वो इन चीजों को ठीक नहीं कर रहा है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है किसी भी भक्त के जीवन में। इसको बोलते हैं, जैसे कई बार एक शब्द आता है भागवतम में, आत्महंता करके, सुसाइड है ना, तो उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर, जानिया शून्य विष खाएं, जानबूझकर उसने क्या करा, समझ भी रहा है, सुन भी रहा है, मालूम भी है, लेकिन फिर सब किताबी बातें हो जाती है, ये सब कागज पन्ने लगने लगते हैं उसको, बड़ी बड़ी चीजें क्या लगने लगती हैं, ठीक है पढ़ लिया मैंने, ये भी पढ़ लिया मैं, वो भी पढ़ चुका हूं, ये केवल फिर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए रह जाती बुक्स, इसमें से क्या निकाल लूं मैं किसी को बताने के लिए। तो बहुत ही सीरियस मैटर है। हमने बात शुरू की थी कि किस प्रकार, जब पिछले बार में भी, कि तमोगुण रजोगुण की वजह से व्यक्ति संसार में संघर्ष कर रहा है, और यहां पर रहकर वो व्यक्ति जब वो आध्यात्मिक वातावरण में भी आता है, तो उस प्रकार की अटैचमेंट के कारण या उस प्रकार के रजोगुण के कारण जो उसको फोर्स करता है दूसरे काम करने में, इन गुणों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसको यहां पर हर चीज जो है, यहां के दुख, यहां के सुख, यहां की समस्याएं उसको प्रभावित करती। अब किसी के जीवन में सबसे बड़े प्रभावित करने वाली स्थिति क्या है, सबसे अगर स्ट्रांग भी देखना चाहें तो सबसे खतरनाक क्या है, किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी मिस हैपनिंग क्या है, भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, वैसी मृत्यु, खुद मर जाना या दूसरा व्यक्ति जो हमारे जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं उसका चला जाना, एक सबसे एक्सट्रीम अगर वैसे सोचे तो। वास्तव में जो भक्त हैं, जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, वो इस तरह के बड़े बड़े परिवर्तन जो दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है, उनको प्रभाव नहीं डालती। वो ग्रंथों को जानते हैं, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहते नरोपराणि, वो जानते हैं कि पुराने वस्त्र छोड़ते हैं, नए वस्त्र लेते हैं, तो बहुत उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये लेकिन जो लोग इस तरह के सेल्फ रियलाइज नहीं है, जो भक्ति मार्ग में नहीं, उनके लिए कितनी बड़ी घटना है ये, किसी का चले जाना है, किसी का वो हो जाना, और फिर इसके बाद मृत्यु किससे पहले की चीजें जो हैं, कोई कटु शब्द सुन लेना, किसी को कुछ उल्टा बोल देना, या बिजनेस में ऊपर नीचे हो जाना, या कहीं पर जॉब का ट्रांसफर हो जाना, है ना, कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो लोगों के लिए ये भी बड़ी समस्या होगा। तो भक्त के लिए ये सब समस्याएं समस्याएं नहीं होती, लेकिन एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो इन सब चीजों से इतना जुड़ा हुआ, अपने को शरीर मानता हुआ, इन शरीर से जुड़ी हुई चीजों से आसक्त है वो, पूरा का पूरा संसार इस समय किस तरह आग से धधक रहा है, अब सोच कर देखिए पूरे संसार में हो क्या रहा है इस समय, कि एक कम्युनिटी है जो पूरे संसार को अपनी कम्युनिटी के हिसाब से बनाना चाहती है। इसने बड़ी अच्छी बात लिखी एक जगह कि बड़े बड़े लीडर आए समाज में जो चाहते थे हम पूरे विश्व को अपने झंडे या अपने धर्म के अंदर डाल दें, लूटा, कत्लेआम मचाए, लाखों लाखों लोग मारे, कन्वर्ट किए, नहीं कर पाए, खुद भी चले गए एक दिन, समाज वहीं का वहीं ऐसा का असर आ गया, कुछ प्रभाव डाल पाए। फिर दूसरे लोग आए, उनको लगा कि हम कर देंगे ऐसा संसार में कि हम पूरा इस अपने धर्म का बना डालेंगे, वो भी आए, वो भी चले गए, अभी भी संघर्ष चल रहा है संसार में। और किस प्रकार एक दूसरे के खून के प्यासे, अब देखने में तो पूरा का पूरा संसार, इसलिए बोला दावानल, यहां आग लगी हुई है। आज भी सुनने में आया कि एक स्कूल के अंदर कोई 6 आतंकवादी चले गए और 100-150 बच्चों को ऐसे मार दिया, बच्चों को। अब क्या करा था बच्चों, हर जगह कहीं पर कुछ भी हो सकता है, यदम कहते पदम पदम यत विपदम। तो ये संसार यहां पर ये एफडियां करने के लिए नहीं है, मतलब यहां पर इस तरह की प्लानिंग नहीं करनी कि भाई लगे रहो बस जीवन भर, अभी आ रहे हैं फिर अगली बार फिर आएंगे। ये संसार रहने के लिए नहीं है। आप पिछले 20 सालों में देख लो ना क्या क्या हो गया, कैसे कैसे घटित, कहां कहां क्या क्या समस्याएं हो गई, सरकारें आ रही हैं, बदल रही हैं, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, और ये सब हमको इतना आकर्षित कर रहा है कि हम उसके आकर्षण से, उसके मनोरंजन से एंगेज्ड हैं, फील गुड की भावना है। ये संसार रहने के लिए नहीं, ये बिल्कुल नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि दिस प्लेस इज नॉट फॉर जेंटलमैन, ये संसार सज्जन पुरुषों के लिए रहने के लिए नहीं। सज्जन पुरुष तो समझते नहीं, सज्जन पुरुषों के रहने के लिए नहीं है जगह। तो जल्दी से जल्दी सज्जन बनिए और संसार से निकलिए, है ना। तो ये संसार जो है इस प्रकार से निर्मित किया गया है कि जीवात्मा को जो देहात्म बुद्धि से ग्रसित है और इस संसार में जिन्हें भेजा गया है पनिशमेंट के रूप में, या यूं कहें कि ठीक है आप अगर भगवान कहते हैं मेरे से अलग होकर एंजॉय करना चाहते हो तो हेयर इज दिस मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय, तो यहां तो एंजॉयमेंट के नाम पर केवल पनिशमेंट है। और कितने कितने प्रकार से व्यक्ति यहां पर संघर्ष करता हुआ इन पनिशमेंट्स को झेल रहा है, दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं। कहते हैं ना जो गोविंद दास जी ने भजन लिखा है, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद, दुर्लभ मानव। पहली बात तो इतनी सारी, जब यहां भेजा तो 84 लाख में से दुर्लभ मानव शरीर मिला, जो कि किसी को मिलता ही, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। और फिर जन्म में मिलने के बाद सत्संग नहीं मिलता, तरह है भव सिंधुरे शीत आतप बात बरीशन ए दिने या मिन जाए। कहते हैं कि यहां पर ये व्यक्ति ये शरीर प्राप्त करने के बाद शीत और आतप, यहां के कभी कड़कती ठंड का सामना करना पड़ रहा है, कभी बर्फ का सामना करना पड़ रहा है, कभी कठोर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, बात बरीशन ए दिने या मिन जागे, यहां संघर्ष कर रहा है बार बार हर जीवन में। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की अच्छे पर, और जिस धन को वो एकत्रित कर रहा है, जिस रूप के पीछे वो उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जिन परिजनों को उसने इकट्ठा किया, ये सब यहीं रह जाए। क्यों? क्योंकि कमल दल जल जीवन टल, कि हमारा जो जीवन है कमल के पत्ते पर पड़े हुए पानी के एक ड्रॉप के समान है, उस पर रुकता नहीं है वो। अब ये एक तो कब, इसका मतलब ये कि एक तो कभी भी मृत्यु आ सकती है ना, कभी भी आ सकती है और आएगी जरूर, दो चीजें। तीसरा, इसको इतना जल्दी फ्लिकरिंग इसलिए बोला गया क्योंकि ऊपर अर्थात ऊपर के लोगों से फिर ब्रह्मा जी की आयु की दृष्टि से इसको देखने की कोशिश करते हैं, तो ये कमल के जल के ऊपर फूल पानी के बूंद के समान है। अब एक मच्छर का जीवन या कोई चींटी का जीवन जो 2-4-5 दिन का है, उसका कितना बड़ा जीवन है, 100 साल उसके, वो 100 साल के बराबर है उसके लिए, और हमारे लिए उसके लिए, उसके दिन कितने के समान है, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, हमें लगता है कि वो 1 दिन जीती है। उसी तरह देवताओं के 1 दिन 12 घंटे हमारे यहां के 6 महीने के बराबर, तो उनके सामने हमारा जीवन कितना छोटा है, अरे बस इतने ही जीत रहे हैं। उनके लिए सूर्य उत्तरायण में जाता है फिर दक्षिणायण में आता है, तो उनका दिन और रात होती है, हमारे यहां के 6-6 महीने बीत जाते हैं। और देवताओं का जीवन ब्रह्मा जी के सामने, वो भी चींटी के समान उनके लिए, और स्वयं ब्रह्मा जी का जीवन महाविष्णु के श्वास के आगे, वो भी चींटी एक श्वास के समान, वो सांस छोड़ी हुई है भगवान ने, अब अंदर लेंगे, सृष्टि बदल रही है, ब्रह्मा जी निकल रहे हैं उनके 100 साल, और श्वास अंदर लिया ब्रह्मा जी अंदर। आपने कितनी बार सांस ले लिया अभी तक मालूम है कि नहीं, तो जितनी बार ले लिए समझ लो, इस प्रकार अगर महाविष्णु सांस ले रहे हैं तो इतनी बार सृष्टि होती है और इतनी बार सिमट जाती है, उसमें ब्रह्मा जी एक सांस के समान, फिर डेमी गॉड्स उनकी ओर, हम लोगों को तो गिनो ही मत फिर, ये स्थिति। और इस प्रकार जब हम लोग इस संसार के इंटरकेसिस को समझने की कोशिश करते हैं, जीवन मृत्यु के इंटरकेसिस को समझने की कोशिश करते हैं, इस संसार के संघर्षों को समझने की कोशिश करते हैं, दुखों को, तकलीफों को समझते हैं, और फिर स्प्रिट और मैटर अर्थात आत्मा और इस भौतिक तत्व को समझने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए हम लोग उस स्तर पर पहुंच रहे हैं, जब इस स्तर पर आते हैं कि जहां से हम लोग हर चीज को तत्व से देख सकते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि हर कार्य विचार और एक्शन, विचार जब मन में आता है और एक्शन चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, ये दोनों ही तो चीजें हैं, विचार आने के बाद एक्शन, और एक्शन से बनता है हमारी डेस्टिनी। इन सब चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि ये समाज, ये संसार के साथ रहना है लेकिन यहां का होकर नहीं रहना। हर व्यक्ति को प्रभुपाद जी बोलते हैं फर्स्ट कैंटो में कि हर व्यक्ति को अपना प्लेन स्वयं उड़ाना है। मैं नाम भूल गया उन महाराज का, महात्मा दास है या कोई और, जिन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी, तो क्या लिखी, स्वप्न में, मतलब ऐसा कुछ एक काल्पनिक कथा है, उसमें बताया कि एक बार एक व्यक्ति भगवत धाम पहुंचा और भगवत धाम के गेट पर जाते हुए ऐसे देख रहा है, आश्चर्यचकित, और जिनको देख रहा है वो लोग भी उसको देखकर आश्चर्यचकित हैं, और सब जो डीलिंग कर रहे थे नाच रहे थे सब रुक गए, सब लोग उसको, तो वो क्यों आश्चर्यचकित था, वो कहते ये कैसे, ये भगवत धाम में क्या कर रहा है ये आदमी, ये तो मुझे, मैं जानता हूं इसको, तो कितना निकम्मा था, ये कुछ करता ही नहीं था, कितनी बार सेवा बोली इसको, ये कैसे आ गया, ये तो बहुत वो करता था, ये कैसे आ गया, हर एक को सब पहुंचे हुए हम, और सारे क्या सोच रहे तो हम लोग, हमारी डिग्री से थोड़ी काम चलेगा कि हम जिसको डिग्री देंगे वही जाएगा। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, और भक्त माम अभिजाने, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, और हर व्यक्ति की भक्ति का कोटा अलग है, भाव समर्पण उसका हर एक का अलग है, तो क्या करता हूं, हर एक का जिसका जितना जितना है मैं उसको वैसे रेसिप्रोकेट करता हूं, उसके साथ वैसे डील करता हूं। श्रील प्रभुपाद जी तो कहते थे कि जिस व्यक्ति के साथ तुम ऐसे बोल रहे हो, जिसकी शिकायत लगा रहे हो और ये सब कर रहे हो, अगर तुम्हें यह मालूम पड़ जाए ना कि तुम्हारे साथ वाला व्यक्ति का आध्यात्मिक स्वरूप भगवान के धाम में क्या है, तो यू विल बी फेंट, तुम यहीं बेहोश हो जाओगे। हम यहां पर कैसे देखते हैं एक दूसरे को? बहुत अच्छे विचार नहीं रहते किसी को भी देखने के, जज करने के। हम क्या देखते हैं? एक्सटर्नल देखते हैं कि ये तो ऐसा है, इसकी आदतें तो ऐसी हैं, ये तो ये करता है ना, इसने ये किया था, फिर इसने वो किया था, है ना। हम उसकी बाहर की क्रियाओं को देखकर उसको जज करते हुए उसका एक स्वरूप बना लेते हैं और वो फीड कर देते हैं, यस ये मेरी शीट में गंदा है, और ये क्योंकि मेरे को प्रणाम करता है, ये मेरी बात मानता है, ये मेरे लिए खाना बनाता है, ये है ना, ये मेरे लिए गिफ्ट लाता है, हाँ ये अच्छा है। हम इस बाहरी दृष्टिकोण से देखें, लेकिन असलियत में हमें हर जितने भी सब लोग दिखाई दे रहे हैं जैसे भी है, ये सब क्राइटेरिया नहीं है किसी को जज करने का। महाप्रभु तो कहते हैं तीन तरह के वैष्णव है ना, तीन कैटेगरी, जो जिसने भगवान का नाम लिया वो भी वैष्णव है, एक बार भी लेने वाला, जो दीक्षित है उन सबका सम्मान करो, मान करो, जिसको देख के कृष्ण का स्मरण हो वो भी उत्तम अधिकारी बताया महाप्रभु। तो हमारा जो क्राइटेरिया लोगों को जज करने का, दैट इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग। अगर मान लीजिए किसी का वास्तव में कोई नेचर या कोई आदत या कोई पर्सनैलिटी या उसका बात करना या उसका संग करने से आपको लगता है कि आप पे प्रभाव पड़ेगा, आपकी भक्ति पे प्रभाव पड़ेगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, उसकी उसका आदर सम्मान कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ संग ना करें, उसके साथ उतनी गहरी मित्रता ना रखें, और ये उसको दर्शाने की भी आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं? हम दर्शाते भी हैं कि हम तो जो हैं ऐसे, नहीं नहीं बिल्कुल जरूरत ही नहीं, आप सबका सम्मान करें, लेकिन संग उन्हीं भक्तों का करें जहां पर आपको, जिनके प्रभाव से आप भक्ति में आगे बढ़ सकते। तो एक्सटर्नली जज करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी वैष्णव को हम लोग गलत ढंग से जज करेंगे, और इस प्रकार ये कारण बनेगा हमारा अपराधों का, और बड़े इतने सारे अपराधों का कहां ले जाके जाएंगे हम, इतना वजन हो जाएगा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा इतने वजन के साथ। भगवान को बिल्कुल पसंद है, भगवान को सिंपल सरल डिवोटीज बहुत पसंद है, तो इस प्रकार अगर हम लोग आध्यात्मिक वातावरण में जब आते हैं, तो जो समाज के अंदर रहने में रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से जो हम गलतियां करते थे, वही सब चीज अगर हम यहां रिपीट करते हैं, उन्हीं सब आदतों को हम यहां करते हैं, तो बड़ा मुश्किल है हर एक व्यक्ति के लिए एडवांस करना। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, मैं क्यों करूं सारा सेक्रीफाइस, मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों के अंदर अच्छे गुण देखने की कोशिश, वो देखता है ये उम्र कहीं तारीफ करता है तो हमेशा मेरी निंदा करता है, नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति को ही तो, मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति हूं, मेरी भक्ति मेरे भगवान से मेरा अलग संबंध है, मेरा रिलेशन भगवान से एक अलग है, मेरी भक्ति का कोटा भगवान जानते हैं, मेरे हृदय में भी भगवान है और दूसरों के हृदय में भी भगवान है, तो मेरा जो दायित्व है वो ये कि मैं पूरे संसार को बदलने का प्रयास ना करूं, तुम गलत हो जी कल से ऐसा करना, तुम गलत हो जी तुम ठीक करो, तुम गलत हो जी नहीं, जैसे बोलते थे ना कि संसार भर में अगर कांटे हैं तो आप पूरे संसार में कारपेट बिछाने की मत सोचो, क्या कर लो, खुद जूते चप्पल पहन के खुद अपने को बचा लो। एक बार न्यूजीलैंड राधाना स्वामी महाराज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो आपका वो है उधर या पता नहीं बॉम्बे का, वहाँ पर उनको इनवाइट किया 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में, तो उन्होंने प्रवचन किया और बाद में उन्होंने कहा किसी का कोई प्रश्न है, तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा करा। जैसे लोगों ने देखा किसने हाथ खड़ा करा है तो सबने बोला ऊ, तो वो भागता हुआ आ गया ऊपर, महाराज ने बुला लिया उसको। जब सबने ऊ करा तो महाराज समझ गए जरूर कोई मिस्चीवियस और कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ का जो, तो उसने माइक लिया, कहते जी मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, आप भक्ति की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे बताओ कि अगर सारे भक्त बन गए तो देश की रक्षा कौन करेगा, फैक्ट्री में जो कपड़े पहने कपड़े कौन लाएगा।
इस तरह उन्होंने कई चीजें बोली, ये कौन करेगा, अगर सारे भक्त बन गए तो कौन करेगा इसे। तो जैसे ये बोला तो सब लोग ताली बजाई, बिल्कुल सही, कितना लॉजिकल प्रश्न है कि सारे भक्त बन गया, आप सभी पूछते होंगे ना लोग, सारे भक्त बन गए तो ये कौन करेगा। महाराज 2 मिनट चुप रहे, फिर मैं बोला क्या होगा अगर इस देश के सारे लोग ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। बस इतना बोला, सबने तालियां बजाई, सब समझ गए आंसर कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा सारे वकील बनेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे बॉर्डर पे जाएंगे लड़ने के लिए, इसी तरह ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे भक्त बनेंगे। तो लिमिटेड ही लोग होंगे, हम अगर प्रचार भी करते हैं तो इसके पीछे उद्देश्य यह है कि एक तो गुरु की आज्ञा है, महाप्रभु की आज्ञा है, दूसरा हमारा शुद्धिकरण है, हमें सेवा मिल गई एक कुछ बोलने की या दूसरे जीवों को भगवान की सेवा में लगाने, लेकिन अल्टीमेटली हमें अपने शुद्धिकरण के विषय में सोचना है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, परोपकार हम कर रहे हैं महाप्रभु की आज्ञा के कारण, गुरु की आज्ञा के, गुरु की प्रसन्नता के, अपने शुद्धिकरण के लिए, जीवों पर दया के लिए, क्योंकि बोला गया जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, ये तीनों जो है भक्ति में आगे बढ़ा, तो जीवों पर दया करने के लिए हम लोग उन्हें कृष्ण के पास लेकर जाते हैं, कृष्ण के विषय में। लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को अपना सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, मैं कहां गलत हूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। नहीं, सब ऐसा कर रहे हैं, अगर सब ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जिन नियमों का पालन हम कर रहे हैं सब लोग उन नियमों को तोड़ रहे हैं बाहर, तो हमने उन नियमों को भी तो पालन करने की कोशिश करी है ना, तभी तो आज हम लोग कहीं ना कहीं दीक्षित हुए हैं या दीक्षा के प्रयास में हैं। और इस वैष्णव समाज में अगर हम कहें नहीं नहीं ये भी तो अपराध कर रहे हैं, ये भी तो गलत बोलते हैं, इनकी भी तो ईर्ष्या द्वेष है, ये भी तो सेवा नहीं करते, समझ रहे हैं, इनकी माला भी तो ऐसी होती है, तो फिर वही समझ होगी कि अब इनको देखकर अपने जीवन की अपनी भक्ति खराब करें तो कोई लॉजिक ही नहीं, खुद का नुकसान है। तो जब कभी देखिए पूरे समाज में जैसे क्लासरूम में भी एक ही फर्स्ट आता है ना, प्रधानमंत्री भी एक को ही बनाते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है वो कोई ना कोई मेहनत करता है तभी कोई आगे बढ़ता है, उसी तरह हम ये ना सोचें कि सारे के सारे फर्स्ट आएंगे, विचार कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं सबके लिए, लेकिन अल्टीमेटली मैं नियमों का पालन करूंगा, मैं इस प्रकार के क्रिटिसिज्म से दूर रहूंगा, मैं इस प्रकार के अपराधों से बचूंगा, मैं नियमों का सख्ती से पालन करूंगा, मैं अपनी मॉर्निंग साधना अच्छी रखूंगा, क्योंकि मैं अगर हर एक को दोष देता रहा तो मैं तो कभी आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो मैं अपने अंदर लाऊंगा जो चेंज लाने, जो चेंज मैं दूसरे के अंदर देखना चाहता हूं, वो बदलाव, वो अच्छे गुण मैं अपने अंदर लाऊंगा। तो जब मैं अपने अंदर लाऊंगा, मैं सारे के सारे नियम अपने लिए पालन करूंगा, सारी कठोरता अपने से बरतूंगा, सारी ईमानदारी सारे के सारे अच्छे अपने से रखूंगा सारे के सारे, तो जब मैं अच्छा होऊंगा ना, तो एक तो दूसरे लोगों पे आपको ये इसलिए अच्छा नहीं बनना कि दूसरे पे प्रभाव पड़े। फिर मैं दूसरे को बताऊंगा, देखो मैं तो ये करता हूँ, मैं तो सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, वो नहीं उठते, ये नहीं उठते, नहीं असली नहीं, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सब कुछ अपने लिए करना और फिर दूसरे का ऑटोमेटिकली प्रभाव पड़ता है। हमारे प्रचार में शक्ति तब आती है, हमें टेस्ट तभी मिलेगा इन सब चीजों। तो अपने से शुरू करना है, इंतजार नहीं करना कि कोई आएगा हाथ पकड़े खींचेगा, नहीं। जो मुझे मालूम, गुरु महाराज जब लेक्चर देते हैं तो उसमें सब लोगों के लिए, सब डिसाइपल्स के लिए आज्ञा होती है, तो हर एक पे प्रभाव तो अलग अलग पड़ता है। लेकिन स्टिल मैं ही क्यों सबसे बैक बेंचर बना रहा हूं, मैं ही सबसे आक्रमिक हूं, मैं सबसे आगे वाला बनूंगा ना, तो मैं अपने पे पालन करूं। तो इस प्रकार इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है इस संसार से बाहर निकलने की, तो उसे हाथ से न खोए। जल्द से जल्द व्यक्ति को चाहिए कि वो इस प्रकार के भौतिक धरातल से ऊपर उठे। अगर वो नहीं उठ पाएगा तो खुद का तो नुकसान करेगा ही, क्योंकि जब भी व्यक्ति कहीं पर भी देखें, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी वातावरण में, जब कोई व्यक्ति वहाँ का जो सीनियर बोल लें या वरिष्ठ बोल लें या इस प्रकार के जो भक्त होते हैं, समाज उनको देखता है और उसके बाद फॉलो करता है, यदि यद आचरति श्रेष्ठा बोल। तो श्रेष्ठ लोगों की या जो भक्त लोग हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि उनका बर्ताव, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका पहनावा, है ना, ये सब एकदम एक क्लास चाहिए, क्योंकि वो अब दूसरों को ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो जिसके ऊपर, जिसका, जिसके पास जितना है वो उससे ज्यादा कहाँ देगा, और दूसरा व्यक्ति सीख भी नहीं पाएगा उससे ज्यादा। तो इसलिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी सबसे पहले, तब जाके हम लोग उस सुंदर उस वातावरण को सुंदर बना पाएंगे। और जैसे बताते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, चाणक्य पंडित जी कहते थे कि एक चंद्रमा चाहिए, सैकड़ों तारों की आवश्यकता नहीं है। एक चंद्र तमो हंदी नाश्चा तारा गणपि, बहुत सारे तारों की आवश्यकता नहीं है, एक चंद्रमा से इतना प्रकाश हो जाता है। या कहते हैं कुल में एक पुत्र ही मिल जाए लेकिन वो संस्कारी हो तो पूरे कुल का नाम रोशन करता है, नहीं तो 100-100 पुत्रों की आवश्यकता नहीं है जो सारे बिगड़े हों, है ना। कुंती महारानी के 5 पुत्र थे तो आज भी उनका गुणगान हो रहा है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 100 के 100 खत्म, कोई जरूरत नहीं संख्या बढ़ाने की। इस तरह चाणक्य पंडित जी और एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं जिस प्रकार वन में एक सुगंधित वृक्ष पूरे वन को सुगंधित रखता है, समझ रहे, केवल एक की वजह से, तो उसी तरह का भक्त बनने का प्रयास करें कि जिसकी सुगंध, जिसका व्यवहार, जिसका आचरण, जिसकी ऑनेस्टी, जिसकी भक्ति का जो रस है या भक्ति का जो उसका ऑरा है, वो दूसरों को भी प्रभावित करे। हम ये ना सोचे कि कोई होगा तो उससे मैं प्रभावित होऊंगा, नहीं, मैं हूं ताकि मैं दूसरे को प्रभावित कर सकूं। और ऐसा भी बोला गया है कि इतने बड़ा वन हो तो उसमें एक ही वृक्ष के संघर्षण से भी पूरे में आग लग जाती है। और ऐसे वातावरण में अगर कोई व्यक्ति दूषित मेंटालिटी का आ जाए इसमें, वो भी कई बार सब कुछ खराब कर देता है। लेकिन हमको दृष्टि रखनी पड़ेगी जैसे प्रभुपाद जी की थी, कि प्रभुपाद जी कहते थे कि ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में सब लोग एडमिट हैं। तो कोई अभी एडमिट हुआ है, कोई बहुत पुराना एडमिट है, किसी की डिजीज बहुत छोटी है, किसी की बहुत बड़ी है, तो एवरीवन इज डिजीज्ड, सब लोग बीमार हैं। तो हमारी स्थिति क्या है कि हम दूसरे की बीमारी को देखकर उससे नफरत करते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, उसका उपहास करते हैं, या देखो कैसी बीमारी है इसकी, बीमार मैं भी हूं बट मैं दूसरे बीमारों पे हंस रहा हूं। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि यहां पर सब डिजीज है, तमोगुण रजोगुण का सत्वगुण का प्रभाव सब पर है और उन प्रभावों के कारण ही व्यक्ति एक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती करेगा, कहीं ना कहीं कुछ गलत बोले गई, कहीं ना कहीं कुछ हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चीजों को इग्नोर करना चाहिए और अपनी डिजीज को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है किसी के पास, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, सब धरा का धरा रह जाएगा, सारी रिपोर्ट कार्ड दिखानी पड़ेंगे ऊपर। तो बहुत सीरियसली व्यक्ति भक्त को तो सोचना चाहिए कि यस मुझे क्या चेंजेस लाने हैं अपने में। तो इन सब चेंजेस को इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा अपने अंदर देखें, प्रयास करें और अपने मेंटर से पूछें, क्योंकि मेंटर कभी खुद नहीं बुलाते कि आओ मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे अंदर क्या बीमारी। इतना तो हम लोगों को भक्ति ठाकुर जी कहते ना कि आप शासन कीजिए मेरे ऊपर, डिसाइबल का मतलब होता है शासन करवाना, कि हमने डिसाइड कर लिया कि आप रूल कीजिए हमें, मेरी बुद्धि को, मेरे मन को, मेरी सेंसेस को, जो कि मैं अभी तक अपने हिसाब से चला रहा था इस संसार में, अब दीक्षा के बाद मैं चाहता हूं कि आप चलाएं मेरे शरीर को, आप चलाएं मेरे मन और मेरी बुद्धि को, क्योंकि जब जब मैंने इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का प्रयास किया तो इस संसार में संघर्ष ही किया, दुखी पाए और पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। अब मैं एक प्रमाणिक गुरु की शरण में आ चुका हूं, तो अब मैं अपने आप को शरणागत करता हूं, अपनी बुद्धि को, क्योंकि मैं नहीं सोच सकता कुछ भी अच्छा अपने लिए, क्योंकि मेरी बुद्धि अभी इतनी ज्ञानवान या नहीं, क्योंकि दिव्य ज्ञान भी प्रकाशित होगा हृदय में, वो तब प्रकाशित होगा जब तत्व विधि प्रणी पातेन परेश प्रश्न, जब गुरु की सेवा करेंगे, उनसे प्रश्न करेंगे, उनसे जिज्ञासा करेंगे और विनीत भाव से उनके पास जाएंगे, तब उनकी सेवा करेंगे या उनके द्वारा दी गई सेवा को सेवा करेंगे और सेल्फलेसली करेंगे, पूरे उत्साह के साथ करेंगे, तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा और फिर चित्त एक और एक है, गुरु का और शिष्य का चित्त एक हो जाता है। चित्त एक होने का मतलब होता है कि गुरु की क्या मंशा है, गुरु क्या चाहते हैं। जैसे तीन प्रकार के शिष्य बताते हैं ना, कि एक वो जो मन की भाषा समझता है कि उन्हें क्या पसंद है, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कार्य करता है, ये सबसे ऊंची पोस्ट है, इतनी जल्दी नहीं पहुंचता व्यक्ति इसमें। दूसरा है गुरु जी ने जो कहा वो, हाँ जो बोला मैं वो करूंगा, जो बोला मैं वो करूंगा, दूसरी श्रेणी का शिष्य। और तीसरी श्रेणी का शिष्य वो जो समझ नहीं पाता और अपने मन से ही करता है, मैं बोल रहा हूं ना ऐसा होगा। तो गुरु की चित्त को कह रहे चित्त तो को वो एक हो जाता है। एक होने का मतलब है कि वो समझता है कि गुरु से प्रसन्न होंगे और गुरु से नाराज होंगे। तो जब उसकी बुद्धि में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है तो सबसे पहले चित्त को समझता है गुरु के, फिर अपने मन को और अपनी इंटेलिजेंस को, सॉरी अपनी सेंसेस को, वो गुरु के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम अगर मैंने अपने प्रयास, अपने फायदे, अपनी बुद्धि, अपने मन को अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए लगाया तो दैट विल बिकम अ कर्म, वो एक कर्म बन जाएगा, वो भक्ति का अंग नहीं कहलाएगा, उसका रिएक्शन है, रिएक्शन का मतलब आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा और गुरु को फिर आना पड़ेगा आपको बचाने के लिए। तो हमने गुरु को सेवा में लगा रखा। तो आप सब लोग समझदार हैं, आप ऑलरेडी सब अच्छा अच्छा कर ही रहे हैं, फिर भी इसमें से संबंधित कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछ।
पागल खाने में चाहे अच्छा आदमी चला जाए या पागल जो है वो, हर एक आदमी दूसरे को पागल कहता है, यहाँ यहाँ भी वही बात है, क्या अंतर रहा? हम अपने को अकलमंद समझते हैं यहाँ और दूसरे आदमी को बेवकूफ समझते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए, जैसे आपने सारा अभिनक्षण दिया उसमें सारी चीज़ें ऐसी थी, तो वहाँ यहाँ का जो अंतर क्या रहा?
हमने बताया कि भौतिक समाज में रहते रहते हमारे अंदर इतने प्रकार का, हमारी देहात बुद्धि इतनी स्ट्रांग है और तमोगुण रजोगुण का इतना प्रभाव रहता है कि जब वो इस वातावरण में भी आता है। देखिए दूसरे मंदिरों में और इस मंदिर में ये अंतर है कि दूसरे मंदिरों में तो आप झाड़ू मारो चले जाओ, ट्रैफिक चलो थोड़े जूते उतरवा लो लोगों के तो चले जाओ, कोई डीलिंग नहीं है, कोई चैंटिंग नहीं है, कोई हेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन इस मंदिरों में हमें आत्म साक्षात्कार कराने का प्रयास किया जाता है, सेवाएं दी जाती है, सब कुछ दिया। तो जब यहां पर व्यक्ति सेवा करता है तो उसके अनर्थ निकलते हैं बाहर। अगर कोई व्यक्ति कहे जी ठीक है मुझे माला दे दी, मैं घर ही बैठा हूं, मैं घर ही कर लू, तो उसके अनर्थ कौन बताएगा, उसका प्रभाव कैसे समझेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, सब कुछ उसके सब कुछ आसपास बढ़िया बढ़िया चल रहा है, तो उसके लिए भी ऐसी परिस्थितियां नहीं है। तो जब वो वैष्णवों के बीच में आएगा तो गड़बड़े होंगी होंगी, दुख तकलीफें आएंगी आएंगी, ईर्ष्या द्वेष हो गए होगा। लेकिन हम लोग इसमें क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, हम इसमें एक अलग प्रकार का रस का आस्वादन करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, इन सब चीज़ों से अलग होकर हमें ये समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मेरी भक्ति के लिए नुकसानदायक है, और इस प्रकार की ईर्ष्या हो रही है किसी से, कुछ द्वेष हो रहा है किसी से कुछ ज़्यादा मिलने पर नुकसान हमको फील हो रहा है, तो ये वैकुंठा कल्चर नहीं है। वैकुंठा कल्चर में, गोलोक कल्चर में किसी को कुछ मिलने पर लोग प्रसन्न होते हैं, कोई अच्छी सेवा करे और प्रसन्न होते हैं, किसी को कोई बहुत ज्यादा करीब है कृष्ण के, राधा रानी के, और प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो उन भक्तों को देखकर प्रसन्न हो रहा है। ये गोलोक का कल्चर, तो ये कल्चर यहां बनाने में समय लगता है, क्योंकि मेंटालिटी उस मेंटालिटी से यहां है। तो पहले ईर्ष्या द्वेष और पॉइंटिंग आउट ये सब चीजें करते हैं शुरू में, लेकिन जब कथा का श्रवण करते हैं, निरंतर संग में रहते हैं, तब वो देखते हैं कि नहीं 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 काफी गलतियां करी हैं मैंने, सब कुछ करा, फिर वो वंशा कर दूसरी करता है, वो चाहेगा कि मैं आगे बढ़ूं, उसे कुछ भी अपराध होगा तुरंत माफी मांगेगा, अपनी ईगो को क्रश करेगा ना, क्यों नहीं मांगना माफी व्यक्ति, कारण उसको लगता है मैं हमेशा ठीक हूं, आई एम ऑलवेज राइट, है ना, मेरी सुननी चाहिए, तो वो माफी नहीं मांगेगा। कब तक नहीं मांगेगा, जब तक कि वो तो सीरियस नहीं हो रहा भक्ति के प्रति, और जब समझ आने लग जाएंगी चीजें तो वो व्यक्ति माफी भी मांगेगा। और हम लोग बोल नहीं सकते कि ये व्यक्ति तो ऐसा है, कल को कैसा हो सकता है, वो कब हृदय परिवर्तन हो जाए उसका, कब उसको रियलाइज हो जाए कि यस मैं गलत चल रहा हूँ, कल से ठीक हो सकता है। तो इसलिए किसी को भी इंगित करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, वो नुकसान हमारा ही है। हमने बताया ना तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गलतियां भी हो सकता है कर रहा, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए देखने का वो समझना, हमें बचना है अपने अपनी भक्ति को बचना। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर के मान की बरसी।
हरे कृष्णा 19 तारीख शुक्रवार को हिरवेश केशव महाप्रभु जी का आविर्भाव दिवस है, जन्मदिवस, बहुत सब सेलिब्रेट करेंगे मिलकर के। 7:30 बजे हम सब लोग यहाँ पे आएंगे और श्री कृष्ण प्रभु जी का होपफुली लेक्चर होगा, संकीर्तन होगा, सबके लिए प्रसादम रहेगा।
हरे कृष्ण, प्रसादम हम खुद ही बना रहे ना। सब लोग बना के गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारा आइटम आ जाएगा, 5-5 आइटम बना के लिए, इसी क्लास के लिए इसी लोग यहीं बैठ के पाएंगे, तो
थोड़ी ज्यादा हो जाएगी।
कैसे
ठीक है, मैं 10 लोगों को लगा लो बोला था कि जो इस क्लास में आते हैं 20-25 लोग उतने हो जाएं बस।
नहीं पिछली बार स्कूल में था।
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना भाई,
स्कूल में पिछली बार नहीं हुआ था,
वो
पहले
उससे पिछले हुआ। प्रयास करें किसी
करनी है कि ज्यादा लोगों को इनवाइट ना करें।
हाँ जैसे कहें भाई हमारे पास 600-400 लोग आते हैं भक्ति में, सारे आ गए, वाला सीन नहीं है कि केवल जो लिमिटेड लोग हैं प्रयास करें, ठीक है ना, जो थोड़ा जानते हैं रहते हैं आसपास, मतलब इस तरह से नहीं,
उसमें थोड़ी बुरी दिक्कत भी आती है मान लीजिए, जैसे भक्ति रिक्शाओं में भी आ रहे हैं मान
लीजिए। ऐसा कर सकते हैं जो लीडर्स हैं मान लो कि भक्ति रिक्शा ले रहे हैं वो आ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ आ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जैसे फेस्टिवल कमेटी के लोग हैं मान लीजिए, है ना, उसके लोग हमसे हमेशा कनेक्टेड, जो कनेक्टेड हैं, जो प्रॉपरली जो देख, उन लोगों को बुला सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कि बहुत बड़ा विशाल कुछ करना है,
आप जाएंगे
ठीक है ना,
फिर मंदिर में
ही यही कर लें,
सेट नहीं हो पाएगा।
मंदिर में कहां अंदर,
हम
मंदिर की किचन में बनेगा प्रसाद, अगर घरों से लाएंगे तो ये
कम हो जाएगा,
इम्बैलेंस हो जाएगा सारा।
कौन करेगा प्रसाद का सेवा,
क्या
कोऑर्डिनेशन सेवा प्रसाद, क्या
कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है ना, हम एक दूसरे से ये आइडिया ले लेंगे कितने लोग आ रहे हैं, बहुत से लोगों को प्रसाद बनवा देंगे, उसमें जो खर्चा हुआ वो हम कंट्रीब्यूट कर देंगे।
पिछली बार हमने यही किया था,
ठीक है
ठीक है ना
जी, आईपॉड्स पड़े
ये भी रिकॉर्ड हो गया होगा।
23, 24 और 25 को हाईग्री प्रभु जगन्नाथ जी पे कथा करेंगे और 3 दिन रहेगा शाम के समय। लेकिन बोल रहे थे कि इस बार हमारे भक्त लोग थोड़े से ढीले चल रहे हैं कलेक्शन में।